पैनियम संख्या 14। मंदिर परीक्षा की कुंजी के रूप में निराशा। पवित्र स्थान का विषय वो कुंजी था जिसने तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के आरंभ में 22 अक्टूबर 1844 की निराशा का रहस्य खोल दिया और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के अंत में मंदिर परिभाषा के पवित्र स्थान संदेश का रहस्य खोलने की कुंजी निराशा का विषय ही है।
और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। मत्ती 16:19।
ये तथ्य कि 11 सितंबर 2001 को 9 दिसंबर के रूप में समझा जाता है, जो संयुक्त राज्य में आपातकालीन कॉल के प्रतीक 991 के अनुरूप है, उसी एक की अभिकल्पना थी जिसने सब कुछ अभिकल्पित किया। 18 जुलाई 2020 की निराशा की समझ ही वो बात है जो 144,000 के आंदोलन को उसी रूप में पहचाने जाने योग्य बनाती है, परंतु केवल उनके लिए जो ये देखना चाहते हैं कि यीशु आज भी प्राकृतिक के माध्यम से आध्यात्मिक का निरूपण वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने 2000 वर्ष पूर्व किया था। 20 दिसंबर थर्ण दृष्टि मनुष्य के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम दृष्टि है, और 2020 की निराशा वो मार्ग चिन्ह है जो 10 कुमारियों के भविष्य सूचक इतिहास में मंदिर को पहचाने जाने की अनुमति देता है।
मत्ती 88 के 10 कुवरारियों का दृष्टांत भी एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को चित्रित करता है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 393।
जब 20 जिस दृष्टि का संयोग आधारभूत सत्यों द्वारा निरूपित पश्चदृष्टि से होता है तो वो और भी उत्तम सिद्ध होती है। पौलुस सिखाता है कि भविष्यवक्ताओं की आत्माएं भविष्यवक्ताओं की आत्माओं के अधीन होती हैं। अतः मत्ती की कुमारी कन्याएं वही कुमारियां हैं जिन्हें यूहन्ना 144,000 के रूप में पहचानता है, और यूहन्ना उन्हें प्रकाशित वाक्य 144 में कुवारिया कहकर पहचानता है।
ये वे हैं जिन्होंने स्त्रियों के साथ अपने आप को अशुद्ध नहीं किया क्योंकि वे कुवारे हैं। ये वे हैं जो जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं, और ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल है। प्रकाशित वाक्य 14:4।
शरद ऋतु के पहलौठे फल वे कुंवारे हैं जो मेमे के पीछे पीछे मंदिर में प्रवेश करते हैं, और मंदिर को समझने की कुंजी सन 2020 की निराशा है।
और दाऊद के घर की कुंजी मैं उसके कंधे पर रखूंगा, तब वो खोलेगा और कोई बंद नहीं करेगा, और वो बंद करेगा और कोई खोलेगा नहीं। यशाया 22:22।
यदि किसी एडवेंटिस्ट को 144,000 में गिना जाना है तो प्रवाचकीय अनिवार्यता के अनुसार उसने ऐसी निराशा झेली होगी जो असफल सिद्ध हुई एक सार्वजनिक भविष्यवाणी की घोषणा के कारण हुई थी।
मेरा ध्यान प्रायः 10 कुवारियों के दृष्टांत की ओर दिलाया जाता है, जिनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और होगा, क्योंकि इसका इस समय के लिए एक विशेष अनुप्रयोग है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हुआ है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, अगस्त 1890।
दानियल अध्याय 11 के 15वें पद में वर्णित पनियम का युद्ध वही युद्ध है जो 16वें पद की ओर ले जाता है, और 16वां पद संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून को चिह्नित करता है।
तब उत्तर का राजा आएगा और घेराबंदी का टीला बनाएगा और सबसे दृढ़ गढ़ वाले नगरों को ले लेगा, और दक्षिण की भुजाएं उसका सामना न कर सकेंगी न उसके चुने हुए लोग, और विरोध करने की कोई शक्ति न रहेगी। दानियल 11:15।
इस पद में संयुक्त राज्य रूस को और रूस की चुनी हुई प्रजा को भी पराजित करता है, परंतु अगले पद में रोम के उदय के विरुद्ध कोई ठहर नहीं सकता, जो विश्व विजय के अपने प्रथम चरण के रूप में यहूदा और यरूशलेम को चिह्नित करता है, क्योंकि रोम बाइबल की भविष्यवाणी के चौथे राज्य के रूप में उदित हुआ। पद 16 में शाब्दिक महिमामय भूमि में खड़े होने के द्वारा शाब्दिक रोम के प्राधिकार का प्रतीक उसी शाब्दिक महिमामय भूमि के भीतर था, और इस प्रकार ये पद 41 का पूर्व रूप प्रस्तुत करता है जब आध्यात्मिक रोम के प्राधिकार का चिन्ह संयुक्त राज्य की आध्यात्मिक महिमामय भूमि पर बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्रकाशित वाक्य खो अध्याय 13 के पृथ्वी से निकलने वाले पशु के दो सींग गणतंत्रवाद और प्रोटेस्टेंटवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानियल 11 के पद 15 में एंटियोकस मैग्नस, जिसे एंटियोकस तृतीय और एंटियोकस महान के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी राज्य को, जो प्टोलेमिक वंश द्वारा निरूपित है, पराजित करता है। एंटियोकस डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिनिधित्व करता है और दक्षिण का राजा रूस का। पानियम का युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस तथा रूस की चुनी हुई प्रजा के बीच का युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसमें एंटियोकस विजयी रहा, परंतु इसके बाद उसके राज्य को वास्तविक रोम पद 14 की वो शक्ति ने जीत लिया जो पृथ्वी से निकलने वाले पशु के गणतंत्रवादी सींग की बाह्य दृष्टि की स्थापना करती है। आंतरिक दृष्टि पृथ्वी से निकलने वाले उसी पशु के प्रोटेस्टेंट सींग द्वारा निरूपित होती है। दोनों सींग पानियम के युद्ध में है क्योंकि पतरस वहां योएल की पुस्तक से अपने संदेश के साथ एक प्रोटेस्टेंट के रूप में उपस्थित है।
250 वर्ष।
जब हम पृथ्वी पशु की दो रेखाओं पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि 1776 में पृथ्वी पशु ने अपना उदय आरंभ किया और 1798 तक 22 वर्ष बाद प्रकाशित वाक्य 13 का समुद्र पशु अपना घातक घाव प्राप्त कर चुका था तथा पृथ्वी पशु ने बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में अपना शासन आरंभ कर दिया। 250 वर्ष बाद 2026 में हमें उस आंतरिक मंदिर की परीक्षा का बोध हुआ जो 8 मई 2025 को आरंभ हुई। वे 350 वर्ष अंतियोकस महान से भी संबद्ध है, ईसा पूर्व 496 में दिए गए आदेश से आरंभ करके और उस आदेश से 250 वर्ष आगे बढ़ाने पर हम 240 पर पहुंचते हैं, पानियम के युद्ध से 7 वर्ष पहले और राफिया के युद्ध में प्टोलेमी द्वारा अंतियोकस को पराजित करने के 10 वर्ष बाद, जिसका निरूपण दानियल 11 के पद 11 में किया गया है। दानियल 11:11 निस्संदेह गणतांत्रिक सींग की बाह्य रेखा है जो प्रकाशित वाक्य 11:11 के साथ समरेखित है और प्रकाशित वाक्य 11:11 प्रोटेस्टेंट सींग की आंतरिक रेखा है। दानियल और प्रकाशित वाक्य एक ही ग्रंथ हैं और प्रकाशित वाक्य बाह्य भविष्यवाणी के प्रतीकों के रूप में मोहरों का तथा समानांतर आंतरिक भविष्यवाणी के प्रतीकों के रूप में कलीसियाओं का उपयोग करता है।
कुरूश तीनों फरमानों का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि प्रथम और द्वितीय के बिना तृतीय हो ही नहीं सकता।
अजरा के 7वें अध्याय में वो आज्ञप्ति पाई जाती है, पद 12-26। अपने सर्वाधिक पूर्ण रूप में वो फारस के राजा अर्तक्षत्र द्वारा 445 ईसा पूर्व में जारी की गई थी, परंतु अजरा 6:14 में कहा गया है कि यरूशलेम में यहोवा का भवन कुरूश और दारेवेश और फारस के राजा अर्तक्षत्र की आज्ञा डिक्री हाशिया के अनुसार बनाया गया था। इन तीन राजाओं ने उस आज्ञप्ति का प्रारंभ करके उसकी पुनः पुष्टि करके और उसे पूर्ण करके उसे उस परिपूर्णता तक पहुंचाया जिसकी भविष्यवाणी के अनुसार 3100 वर्षों के आरंभ को चिन्हित करने के लिए आवश्यकता थी। 445 ईसा पूर्व को, अर्थात वो समय जब आज्ञप्ति पूर्ण हुई, उस आज्ञा की तिथि मानने पर 70 सप्ताहों के विषय में भविष्यवाणी की प्रत्येक विशिष्टता के पूर्ण होने का देखा गया। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 326।
457 ईसा पूर्व में कुरूश द्वारा निरूपित तीन फरमानों से प्रारंभ करके 250 वर्ष 717 ईसा पूर्व की राफाया की लड़ाई, जब टोलेमी चतुर्थ ने अंतियोकस महान को पराजित किया, और 200 ईसा पूर्व जब अंतियोकस ने तब पद 15 में पानियम के युद्ध में टोलेमी को पराजित किया के बीच की इतिहासावधि में समाप्त होते हैं। ये रेखा अंतियोकस मैग्नस को डोनाल्ड ट्रंप के साथ संरेखित करती है। बाइबिलीय भविष्यवाणी के छठे राज्य के आरंभ में 1776 से 1798 तक 22 वर्षों की एक अवधि है जो छठे राज्य के उदय का प्रतिनिधित्व करती है। वे 22 वर्ष 2001 से 2023 तक छठे राज्य के इतिहास के अंत में 22 संख्या से निरूपित इतिहास का भी चित्रण करते हैं। 22 दिव्यता और मानवता के संयोजन का प्रतीक है जो बाइबिलीय भविष्यवाणी के छठे राज्य के इतिहास के भीतर संपन्न होता है। वो छठा राज्य पृथ्वी का पशु है जिसके पास गणतंत्रवाद का बाह्य श्रृंग और प्रोटेस्टेंटवाद का आंतरिक श्रृंग है।
22 द्वारा निरूपित संयुक्ति के साथ मसीह जो कार्य सिद्ध करते हैं वही परम पवित्र स्थान में मसीह का अंतिम कार्य है, जिसे पापों के मिटाए जाने द्वारा निरूपित किया गया है, जो योएल के अनुसार और पत्रस की आत्मा प्रेरित व्याख्या के साथ पिछली वर्षा के उंडेले जाने के समय घटित होता है।
अतएव पश्चाताप करो और परिवर्तित हो जाओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जब प्रभु की उपस्थिति से विश्रांति के समय आएंगे। प्रेरितों के काम 3:19।
पाप का मिटाना स्वर्गीय महायाजक का अंतिम कार्य है।
जैसे प्राचीन काल में लोगों के पापों को विश्वास के द्वारा पाप बलि पर आरोपित किया जाता था और उसके लहू के द्वारा प्रतीकतः स्थलीय पवित्र स्थान में स्थानांतरित कर दिए जाते थे, वैसे ही नई वाचा में पश्चात्तापियों के पाप विश्वास के द्वारा मसीह पर आरोपित किए जाते हैं और वास्तव में स्वर्गीय पवित्र स्थान में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। और जैसे स्थलीय की प्रतीकात्मक शुद्धि उन पापों को हटाने के द्वारा संपन्न की जाती थी जिनसे वो कलुषित था, वैसे ही स्वर्गीय की वास्तविक शुद्धि वहां अभिलेखित पापों को हटाने अथवा उनका लोप करने के द्वारा संपन्न की जानी है। परंतु इससे पूर्व कि ये संपन्न हो सके, ये निर्धारित करने के लिए कि कौन पापों के पश्चाताप और मसीह पर विश्वास के द्वारा उसके प्रायश्चित के लाभों के अधिकारी हैं, अभिलेख पुस्तकों की जांच आवश्यक है। अतएव पवित्र स्थान की शुद्धि में जांच का कार्य, न्याय का कार्य निहित है। ये कार्य मसीह के अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आने से पूर्व किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वो आता है तो उसका प्रतिफल उसके साथ होता है, ताकि वो प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार दे। प्रकाशित वाक्य 22:12, महान विवाद 46।
चुनाती अक्टूबर 1884 को जो कार्य आरंभ हुआ वो मध्य रात्रि के आह्वान की पराकाष्ठा पर आरंभ हुआ, और वही कार्य मध्य रात्रि के आह्वान की पराकाष्ठा पर ही पूर्ण होता है, जिसे पत्रस पाप के मिटाए जाने का काल के रूप में पहचानता है, जो जीवितों के न्याय के काल को चिह्नित करता है जब ताजगी के समय आते हैं।
अन्वेषणात्मक न्याय का कार्य और पापों का मिटाया जाना प्रभु के द्वितीय आगमन से पहले संपन्न होना है, क्योंकि मृतकों का न्याय पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार किया जाना है। इसलिए जब तक वो न्याय न हो जाए जिसमें उनके मामलों की जांच की जानी है, तब तक मनुष्यों के पापों का मिटाया जाना असंभव है। परंतु प्रेरित पत्रस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विश्वासियों के पाप उस समय मिटाए जाएंगे जब प्रभु के सामने से विश्रांति के समय आएंगे और वो यीशु मसीह को भेजेगा। प्रेरितों के काम 3:19-20। जब अन्वेषणात्मक न्याय समाप्त होगा तब मसीह आएगा और उसका प्रतिफल उसके साथ होगा कि वो हर एक को उसके कर्म के अनुसार दे। महान संघर्ष पछोर आसे।
शीतलता के काल भी समस्त वस्तुओं की पुनर्स्थापना के काल है।
अतएव तुम मन फिराओ और परिवर्तित हो जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जब प्रभु की उपस्थिति से नवस्फूर्ति के समय आए और वो उस यीशु मसीह को भेजेगा जिसके विषय में पहले तुम्हें प्रचार किया गया था, जिसे आकाश को उस समय तक अपने पास रखना अवश्य है जब तक कि सब वस्तुओं की पुनर्स्थापना के समय न आ जाए, जिसके विषय में परमेश्वर ने जगत के आदि से अपने सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा है। प्रेरितों के काम 3:19-19।
ताजगी के समय प्रभु की उपस्थिति से आते हैं वे तब घटित होते हैं जब यीशु मसीह को भेजा जाता है। जब 11 अगस्त 1840 को प्रकाशित वाक्य 10 का स्वर्गदूत अवतरित हुआ तो बहन व्हाइट ने ये पहचाना कि वो स्वर्गदूत यीशु मसीह से कम कोई व्यक्तित्व नहीं था। 22 अक्टूबर 1844 को मसीह ने जो कार्य आरंभ किया उसका उद्घाटन 1840 से 1844 के इतिहास द्वारा हुआ, ऐसा इतिहास जिसे बहन वाइट परमेश्वर की शक्ति का एक महिमामय प्रगटीकरण कहती हैं, और उसी इतिहास को वो पत्रस के समय के पेंतेकोस्तीय काल के साथ समांतर रखती है और फिर उन्हीं दो भविष्यद्वाणी इतिहास की रेखाओं का उपयोग करके प्रकाशित वाक्य 18 के उस स्वर्गदूत के अवतरण की ओर संकेत करती हैं जो अपनी महिमा से पृथ्वी को ज्योतिर्मय करता है।
वह स्वर्गदूत जो तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की घोषणा में सम्मिलित होता है अपनी महिमा से सारी पृथ्वी को आलोकित करने वाला है। यहाँ एक ऐसे कार्य की भविष्यवाणी की गई है जिसका विस्तार विश्वव्यापी और शक्ति असाधारण होगी। 1840-45 का आगमन आंदोलन परमेश्वर की सामर्थ्य का एक गौरवपूर्ण प्रकटीकरण था। पहले स्वर्गदूत का संदेश संसार के प्रत्येक मिशनरी केंद्र तक पहुंचाया गया और कुछ देशों में ऐसा महानतम धार्मिक जागरण देखा गया जैसा 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार के बाद से किसी भी देश में नहीं देखा गया था। परंतु इन सब से भी बढ़कर वह प्रबल आंदोलन होगा जो तीसरे स्वर्गदूत की अंतिम चेतावनी के अधीन उत्पन्न होगा। यह कार्य पिंतेकुस्ता के दिन के कार्य के समान होगा, जैसे पहली वर्षा सुसमाचार के प्रारंभ में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने में दी गई थी ताकि बहुमूल्य बीज का अंकुरण हो, वैसे ही पिछली वर्षा उसके समापन पर फसल के पकने के लिए दी जाएगी। तब हम जानेंगे यदि हम यहोवा को जानने के लिए लगे रहें। इसका प्रकट होना भोर के समान निश्चित है और वो हमारे पास वर्षा के समान आएगा, पृथ्वी पर पड़ने वाली पिछली और पहली वर्षा के समान। होशे 6:3। हे सियोन की संतानों, मगन हो और अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित रहो, क्योंकि उसने तुम्हें पहली वर्षा उचित परिमाण में दी है और वो तुम्हारे लिए वर्षा बरसाएगा, अर्थात पहली वर्षा और पिछली वर्षा। योएल 2:33। अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 2:17-21। सुसमाचार का महान कार्य इस प्रकार समाप्त नहीं होगा कि परमेश्वर की शक्ति का प्रकटीकरण उसके आरंभ में जितना था इससे कम हो। सुसमाचार के आरंभ में पूर्व वर्षा के उंडेले जाने में जो भविष्यवाणियां पूरी हुई थी वे उसके अंत में अंतिम वर्षा में फिर से पूरी होंगी। यही वे ताजगी के समय हैं जिनकी ओर प्रेरित पत्रस ने दृष्टि रखी जब उसने कहा, इस कारण मन फिराओ और परिवर्तित हो जाओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जब प्रभु की उपस्थिति से ताजगी के समय आएंगे और वो यीशु को भेजेगा। प्रेरितों के काम 3:19-20। महान विवाद शेक बात।
1840-44 का आगमन आंदोलन परमेश्वर की शक्ति का एक महिमामय प्रकटीकरण था जिसने उसके पवित्र स्थान की शुद्धि में मसीह के कार्य के उद्घाटन का मार्ग प्रशस्त किया। वो इतिहास तब आरंभ हुआ जब यीशु, जिन्हें प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के प्रथम स्वर्गदूत के रूप में निरूपित किया गया है, 11 अगस्त 1840-40 से वो हिरासत थे। ऐसा कभी भी यहां समय नहीं आया तब जो परमेश्वर की शक्ति का प्रकटीकरण आरंभ हुआ वो प्रबलित होकर अन्वेषण न्याय के उद्घाटन तक पहुंचा और इस प्रकार उसने परमेश्वर की शक्ति के उस प्रकटीकरण का प्रतिरूप ठहराया जो अन्वेषण न्याय की समाप्ति तक प्रबलित होगा। अंत का वो काल 9 हेलर्बक को आरंभ हुआ जब यीशु फिर से प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के स्वर्गदूत के रूप में उतर आए, जब न्यूयॉर्क की महान इमारतें परमेश्वर के स्पर्श से धराशायी कर दी गईं और अन्वेषण न्याय का कार्य मरे हुए से जीवितों की ओर स्थानांतरित हो गया। वर्षाएं तब आती हैं जब यीशु प्रेषित किए जाते हैं। यीशु ने यह सिखाया कि हमें पाने के लिए मांगना चाहिए और जकरिया कहता है कि अंतिम वर्षा के समय हमें अंतिम वर्षा मांगनी चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि जकरिया के निर्देश की पूर्ति के लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि आप अंतिम वर्षा के समय में हैं।
अंतिम वर्षा के समय यहोवा से वर्षा मांगो, तब यहोवा चमकती घटाएं बना देगा और उन्हें वर्षा की बौछारें देगा और प्रत्येक जन के लिए खेत में घास उत्पन्न करेगा। जकरिया 10:1।
नवंबर पर यीशु प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के स्वर्गदूत के रूप में उतरे और अंतिम वर्षा की बौछारें पड़ने लगीं, परंतु वह केवल उन पर गिरती है जो जकरिया की इस आज्ञा का पालन करते हैं कि अंतिम वर्षा के लिए मांगो, और ये तभी होता है जब उनके पास ये यथार्थ बोध हो कि ताजगी के समय और सब वस्तुओं की पुनर्स्थापना आ पहुंची है। आत्मा को ये पहचानना आवश्यक है कि अंतिम वर्षा का भविष्य सूचक काल आ पहुंचा है।
हमें अंतिम वर्षा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये उन सब पर आने वाली है जो हम पर गिरने वाली अनुग्रह की ओस और फुहारों को पहचानेंगे और अपनाएंगे। जब हम प्रकाश की झलकियां समेट लेते हैं, जब हम परमेश्वर की निश्चित दयाओं की कद्र करते हैं जो ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, तब हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। यशाया 61:11 उद्धृत। संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर दी जाएगी। द सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7, नालो सर्था तेरास।
9/11 को ताजगी के समय आरंभ हुए और जीवितों के पापों का मिटाया जाना आरंभ हुआ। वो न्याय अब्राहम की तीन चरणीय वाचा के सर्वप्रथम सिद्धांत के अनुरूप है। वो प्रथम सिद्धांत ये था कि प्रभु इज़राइल को मिस्री दासत्व से बाहर निकालते समय अपने वाचा जन के साथ साथ उस राष्ट्र का भी न्याय करेगा जहां वे परदेसी और अजनबी के रूप में रहते आए थे। प्रथम वाचा जन अंतिम वाचा जन के प्रतिरूप थे, जो 144,000 हैं। वे भविष्यवाणी परक लोग पृथ्वी से निकलने वाले पशु के प्रोटेस्टेंट सींग के रूप में न्याय किए जाएंगे, और उसी समय पृथ्वी से निकलने वाले पशु के रिपब्लिकन सींग का भी न्याय होगा। गणतांत्रिक सींग का न्याय उसके इतिहास के अंत में होता है, जो कि रविवार का कानून है। रविवार का कानून पद 16 की उस पूर्ति में निरूपित है जिसमें 3 पकृष्ट ईसा पूर्व में रोम ने यहूदा पर अधिकार कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये प्रायश्चित दिवस पर हुआ। एंटियोकस मैग्नस पद 10-15 में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। रोनाल्ड रीगन ने पद 10 के युद्ध में विजय पाई, जो पद 40 में सोवियत संघ के पतन का प्रतिरूप था। यशाया 8 उसी युद्ध की पहचान करता है जो दानियेल 11 के पद 10 और 40 में निरूपित है, और वे तीनों समानार्थ पद पद 11 में वर्णित राफिया के युद्ध के विजेता के रूप में रूस की पहचान संभव करते हैं। 11वीं आयत में राफिया का युद्ध दक्षिण के राजा रूस और पोपाई सत्ता की प्रतिनिधि शक्ति यूक्रेन के बीच यूक्रेन के युद्ध का पूर्व चित्रण करता था। इस युद्ध की पहल ओबामा प्रशासन ने दक्षिणी गोलार्ध से आने वाले प्रथम पोप के काल में की, जो अमेरिका महाद्वीप से आने वाले प्रथम पोप भी थे, यद्यपि वे दक्षिण अमेरिका से थे। दक्षिण वैश्वीकरण, आत्मवाद और साम्यवाद का प्रतीक है, और जब 11वीं आयत का युद्ध आया, तब अमेरिका महाद्वीप से आने वाले उस प्रथम दक्षिणी पोप ने वैश्वीकरणवादी राष्ट्रपति ओबामा के साथ स्वयं को संरेखित किया। 10वीं आयत में संयुक्त राज्य के रूप में रीगन ने एक रूढ़िवादी पोप के साथ एक गुप्त संधि की। तत्पश्चात वैश्वीकरणवादी पोप के काल में एक वैश्वीकरणवादी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन के नाजियों को नियोजित किया गया। ट्रंप के अधीन संयुक्त राज्य अब प्रथम उत्तरी अमेरिकी तथा कथित रूढ़िवादी पोप के साथ एक खुले संबंध में है। पद 10 के युद्ध में रीगन का बाइबिलीय भविष्यवाणी के मसीह विरोधी के साथ एक गुप्त गठबंधन था, और ओबामा ने पद 11 के युद्ध का आरंभ उस काल में किया जब पोप भी ओबामा के समान वैश्ववादी था। ट्रंप अब रीगन के समानांतर एक पोप के साथ प्रकट संबंध में है, सिवाय इसके कि प्रारंभिक गुप्त गठबंधन अब एक खुला गठबंधन है। 3 पोप और 3 राष्ट्रपति पद 10, 11 और 15 के 3 युद्धों के अनुरूप ठहरते हैं।
अपनी चतुराई और कपटपूर्ण कौशल में रोमन कलीसिया अद्भुत है। वो आने वाली बातों को पढ़ सकती है। वो अपने समय की प्रतीक्षा करती है, ये देखते हुए कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं झूठे सप्त को स्वीकार करके उसे सम्मान अर्पित कर रही हैं, और वे उसी के प्रवर्तन की तैयारी उन्हीं साधनों द्वारा कर रही हैं जिन्हें वो स्वयं बीते हुए दिनों में काम में ला चुकी है। जो लोग सत्य के प्रकाश को अस्वीकार करते हैं, वे अभी इसी स्वयं घोषित अचूक शक्ति की सहायता खोजेंगे, ताकि उस संस्था को ऊंचा उठाएं जिसका उद्गम उसी से हुआ है। इस कार्य में वो प्रोटेस्टेंटों की सहायता करने के लिए कितनी तत्परता से आएगी, इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। कलीसिया की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसे पोपिया अगुओं से बढ़कर और कौन समझता है। रोमन कैथोलिक कलीसिया अपनी समस्त शाखाओं और विस्तारों सहित, जो समस्त संसार में फैली हुई है, पोपीय सिंहासन के नियंत्रणाधीन एक विशाल संगठन का रूप धारण करती है, और उसकी रचना पोपीय आसन के हितों की सेवा के लिए की गई है। उसके करोड़ों सदस्य पृथ्वी के प्रत्येक देश में इस प्रकार शिक्षा पाए हुए हैं कि वे अपने आप को पोप के प्रति निष्ठाबद्ध समझें। उनकी राष्ट्रीयता या उनकी सरकार, चाहे जो भी हो, उन्हें कलीसिया के अधिकार को अन्य सभी अधिकारों से ऊपर मानना है। यद्यपि वे राज्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ले सकते हैं, तो भी इसके पीछे रोम के प्रति आज्ञाकारिता की वो प्रतिज्ञा निहित रहती है जो उन्हें उसके हितों के प्रतिकूल प्रत्येक प्रतिज्ञा से मुक्त कर देती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने चतुराई और निरंतरता से राष्ट्रों के मामलों में अपनी पैठ बनाने के प्रयास किए और एक बार पैर जमाने के बाद अपने ही उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक कि राजकुमारों और जनता के विनाश की कीमत पर भी। सन 104 में पोप इनोसेंट तृतीय ने आरागोन के राजा पीटर द्वितीय से निम्नलिखित असाधारण शपथ ली, मैं पीटर आरागोनियों का राजा घोषणा करता और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने स्वामी पोप इनोसेंट, उनके कैथोलिक उत्तराधिकारियों और रोमन कलीसिया के प्रति सदा निष्ठावान और आज्ञाकारी रहूंगा और कैथोलिक विश्वास की रक्षा करते हुए तथा विधर्म की दुष्टता का उत्पीड़न करते हुए उनके प्रति आज्ञाकारिता में अपने राज्य को निष्ठापूर्वक बनाए रखूंगा। जॉन डाउलिंग, रोमनिज्म का इतिहास, पुस्तक 5, अध्याय 6, अनुभाग 55। ये रोमन धर्माध्यक्ष की शक्ति के संबंध में किए गए दावों के अनुरूप है कि उसके लिए सम्राटों को पदच्युत करना वैध है और वह प्रजाजनों को अधर्मी शासकों के प्रति उनकी निष्ठा से मुक्त कर सकता है। मोशाइम, पुस्तक 3, शताब्दी 11, भाग 2, अध्याय 2, अनुभाग 9, टिप्पणी 17। और ये स्मरण रखा वाए कि रोम का यही गर्वोक्तिपूर्ण दावा है कि वो कभी नहीं बदलती। ग्रेगरी साथे और इनोसेंट 30 के सिद्धांत आज भी रोमन कैथोलिक कलीसिया के सिद्धांत हैं और यदि उसके पास केवल शक्ति हो तो वो उन्हें आज भी उतनी ही प्रबलता के साथ व्यवहार में ले आएगी जितनी गत शताब्दियों में लाई थी। प्रोटेस्टेंट बहुत कम जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं जब वे रविवार के उत्कर्ष के कार्य में रोम की सहायता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखते हैं, जबकि वे अपने उद्देश्य की सिद्धि पर तुले हुए हैं, रोम अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने, अपनी खोई हुई प्रभुता को फिर से प्राप्त करने का लक्ष्य साधे हुए हैं। संयुक्त राज्य में यदि एक बार यह सिद्धांत स्थापित हो जाए कि कलीसिया राज्य की शक्ति का उपयोग कर सकती है या उसे नियंत्रित कर सकती है, कि धार्मिक अनुष्ठानों को लौकिक विधियों द्वारा लागू कराया जा सकता है, संक्षेप में कि कलीसिया और राज्य का अधिकार अंतःकरण पर प्रभुत्व करे, तो इस देश में रोम की विजय निश्चित है। परमेश्वर के वचन ने आसन संकट की चेतावनी दे दी है। यदि इसकी उपेक्षा की जाए तो प्रोटेस्टेंट जगत को ये केवल तब ज्ञात होगा कि रोम के वास्तविक उद्देश्य क्या है जब फंदे से निकलना बहुत देर हो चुकी होगी। वो निस्तब्धता से सत्ता में वृद्धि कर रही है। उसकी शिक्षाएं विधान सदनों में, कलीसियाओं में और मनुष्यों के हृदयों में अपना प्रभाव डाल रही हैं। वो अपने ऊंचे और विशाल ढांचों को खड़ा कर रही है जिनके गुप्त अंत स्थलों में उसके पूर्व के उत्पीड़न फिर से दोहराए जाएंगे। चुपके से और बिना किसी के भान के वो अपनी शक्तियों को सुदृढ़ कर रही है ताकि जब प्रहार करने का समय आए तो अपने स्वयं के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सके। उसे केवल एक अनुकूल स्थिति चाहिए और ये उसे पहले ही दी जा रही है। हम शीघ्र ही देखेंगे और अनुभव करेंगे कि रोमी तत्व का अभिप्राय क्या है। जो कोई परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा और उसका पालन करेगा वो इसी कारण निंदा और सताव का भागी होगा। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 580-581।
2016 में ट्रंप निर्वाचित हुआ, तत्पश्चात बाइडेन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वैश्विकतावादियों ने 2020 का चुनाव चुरा लिया, परंतु इसे केवल वे ही पहचानते हैं जिनकी 20 सती दृष्टि है। पद 13 में डोनाल्ड ट्रंप 2024 में लौटता है अब तक से अधिक सामर्थ्य के साथ और स्वर्ण युग के लिए, तथा पद 15 में पानियम के युद्ध के लिए अपनी तैयारी आरंभ करता है। तब 2025 में उस दर्शन को स्थापित करने हेतु पोप लियो आया जो पद 10 से 15 तक वर्णित तीन युद्धों तथा उन युद्धों के तीन राष्ट्रपतियों से संबद्ध तीसरा पोप है। प्रथम और तृतीय पोप तथा राष्ट्रपति रूढ़िवादी माने जाते हैं और मध्यवर्ती पोप तथा राष्ट्रपति वैश्विकतावादी थे। प्रथम संधि गुप्त थी, अंतिम प्रकट है, क्योंकि पद 14 में उसे अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों के बाह्य दर्शन की स्थापना करने वाले प्रतीक के रूप में निरूपित किया गया है। 53 दिसंबर 2030 को प्रथम आज्ञा के कार्य के प्रतिरूप के रूप में प्रथम दूत का कार्य नींव रखने से आरंभ हुआ। आधारभूत परीक्षा इस बात पर थी कि पद 14 में दर्शन की स्थापना करने वाला रोम ही है। इस पहचान में विलियम मिलर सही थे या गलत? अंतिम दिनों के भविष्य सूचक दर्शन की स्थापना करने वाले प्रतीक के रूप में रोम की मिलर द्वारा की गई पहचान कुछ दृष्टियों से मिलर की सभी मूलभूत सत्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिलर कुछ समझौतों तक कैसे पहुंचे, ये केवल उनके समय और परिस्थितियों पर पवित्रीकृत तर्क का अनुप्रयोग करके ही निष्कर्षित किया जा सकता है, परंतु उनकी कुछ भविष्य सूचक खोजों के विषय में ये बहुत विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध है कि वे अपनी उन समझों तक क्यों पहुंचे। उनकी सबसे मूलभूत समझ ये पहचान थी कि दर्शन की स्थापना रोम ही करता है।
मिलर सीधे साक्ष्य देते हैं कि उन्होंने ये समझने के लिए कैसे खोज की कि दानियल की पुस्तक में जो हटा लिया गया था वो क्या था। वे न केवल ये बतलाते हैं कि उन्हें अपना उत्तर कहाँ मिला, बल्कि जब उन्होंने वो रत्न खोज लिया जिसकी वे तलाश कर रहे थे, तब अपने उत्साह का भी वर्णन करते हैं। अपोलोस हेल ने मिलर की अपनी रचनाओं पर एक टीका लिपिबद्ध की है और निम्नलिखित अनुच्छेद में हेल ये स्पष्ट करते हैं कि मिलर भविष्यवाणी का विद्यार्थी कैसे बना। मिलर उस ज्योति के संदेश वाहक के रूप में जिसकी मोहर 58 में खोली गई, उन लोगों का एक पवित्र उदाहरण है जिन्हें दानियल ने ज्ञानी कहा है, जो पुस्तक की मोहर खुलने पर समझते हैं। मिलर का ये साक्ष्य कि उन्हें बाइबल का अध्ययन करने की ओर कैसे अग्रसर किया गया, उस एक के द्वारा दिया गया उद्देश्यपूर्ण उदाहरण है जो सब बातों को नियंत्रित करता है। मिलर के विकास पर ध्यान दें, क्योंकि वे उन ज्ञानी का उदाहरण हैं जो ज्ञान की वृद्धि को समझते हैं, चाहे वे मिलर की ही भांति त्रुटि के अंधकार में से बाहर ही क्यों ना आए हों।
मई सन 1816 में मैं पाप बोध के अधीन आ गया और ओ किस भीषण भय ने मेरी आत्मा को भर दिया। मैं भोजन करना भूल गया, आकाश पीतल सा प्रतीत हुआ और पृथ्वी लोहा सी। इसी दशा में मैं अक्टूबर तक बना रहा, जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी और हे मेरी आत्मा, मैंने यीशु को कैसा उद्धारकर्ता पाया। मेरे पाप मेरी आत्मा से बोझ के समान गिर पड़े और तब पवित्र शास्त्र मुझे कितना स्पष्ट प्रतीत हुआ। वह संपूर्णतः यीशु ही के विषय में बोलता था, वह प्रत्येक पृष्ठ और प्रत्येक पंक्ति में उपस्थित थे। ओ वो कितना सुखद दिन था, मैं सीधे स्वर्ग गृह को चला जाना चाहता था। यीशु ही मेरे लिए सब कुछ थे और मुझे लगा कि मैं सबको उसे वैसा ही दिखा सकूंगा जैसा मैंने उसे देखा, पर मैं भूल में था।
जब मैं 12 वर्षों तक दैववादी था, उस अवधि में मैंने जितने भी इतिहास ग्रंथ मुझे मिल सके सब पढ़ डाले, पर अब मुझे बाइबल से प्रेम हो गया था। वो यीशु के विषय में शिक्षा देती थी, तथापि बाइबल का बहुत सा भाग मेरे लिए अब भी अस्पष्ट था। 1818 या 1819 में एक मित्र से वार्तालाप के समय, जिससे मैं मिलने गया था और जो मुझे जानता था तथा जिसने मुझे दैववादी रहते हुए बोलते सुना था, उसने कुछ संकेतपूर्ण ढंग से पूछा, इस पद और उस पद के विषय में तुम्हारा क्या विचार है, अर्थात वे पुराने पद जिन पर मैंने दैववादी रहते आपत्ति की थी। मैं समझ गया कि उसका आशय क्या है और उत्तर दिया, यदि तुम मुझे समय दोगे तो मैं तुम्हें उनका अर्थ बता दूंगा। तुम्हें कितना समय चाहिए मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें बता दूंगा, मैंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता था कि परमेश्वर ने ऐसी प्रकाशना दी है जिसे समझा न जा सके। तब मैंने अपनी बाइबल का अध्ययन करने का निश्चय किया, ये विश्वास करते हुए कि मैं जान सकूंगा कि पवित्र आत्मा का आशय क्या है। परंतु जैसे ही मैंने ये निश्चय किया, मेरे मन में ये विचार आया, यदि मान लो तुम्हें कोई ऐसा अंश मिले जिसे तुम समझ न सको तो तुम क्या करोगे। तब बाइबल का अध्ययन करने की ये विधि मेरे मन में आई, मैं ऐसे अंशों के शब्दों को लूंगा और उनका अनुगमन बाइबल भर में करूंगा और इस प्रकार उनके अर्थ का पता लगाऊंगा। मेरे पास क्रूडन का कॉनकॉर्डेंस 1727 में क्रय किया था, जिसे मैं संसार में सर्वोत्तम मानता हूँ। सो मैंने उसे और अपनी बाइबल ली और मेज पर बैठ गया और समाचार पत्रों को थोड़ा बहुत छोड़कर और कुछ न पढ़ा, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि अपनी बाइबल का आशय जानूंगा। मैंने उत्पत्ति से आरंभ किया और धीरे धीरे पढ़ता गया, और जब मैं ऐसे किसी पद पर पहुंचा जिसे मैं समझ न सका, तो उसका अर्थ जानने के लिए मैंने बाइबल भर में खोजबीन की। जब मैंने इस प्रकार सारी बाइबल का अध्ययन कर लिया, ओ सत्य कितना उज्ज्वल और महिमामय प्रतीत हुआ। मैंने वही पाया जिसका मैं आप सबको उपदेश देता आया हूँ। मैं इस बात से आश्वस्त हो गया कि सात समय का अंत 48 में हुआ। फिर मैं 2/3 दिनों पर पहुंचा। उन्होंने मुझे उसी निष्कर्ष तक पहुंचा दिया, परंतु उद्धारकर्ता कब आएंगे ये जानने का मेरे मन में कोई विचार न था और मैं इस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। परंतु ऐसा प्रबल प्रकाश मुझ पर पड़ा कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। अब मैंने सोचा, मुझे स्पर्स और ब्रीचिंग पहन लेनी चाहिए। न मैं बाइबल से आगे बढ़ूंगा, न उससे पीछे रहूंगा। बाइबल जो कुछ सिखाती है मैं उसी को दृढ़तापूर्वक थामे रहूंगा। फिर भी कुछ पद ऐसे थे जिन्हें मैं समझ नहीं सका। बाइबल का अध्ययन करने की उसकी सामान्य पद्धति के विषय में इतना ही। एक अन्य अवसर पर उसने हमारे समक्ष प्रस्तुत इस पाठ नित्य के अर्थ का निश्चय करने की अपनी पद्धति बताई। मैं पढ़ता गया, उसने कहा, और दानियल के सिवा किसी अन्य स्थान पर इसका कोई और उदाहरण न पाया। तब मैंने वे शब्द लिए जो इसके साथ जुड़े हुए थे। हटा देना, वह नित्य को हटा देगा उस समय से जब नित्य हटा दिया जाएगा, इत्यादि। मैं आगे पढ़ता गया और मुझे लगा कि इस पाठ पर मुझे कोई प्रकाश न मिलेगा। अंततः मैं 2 थिस्सलुनीकियों 2:7-8 पर पहुंचा, क्योंकि अधर्म का भेद तो अब ही काम कर रहा है। केवल जो अब रोकता है वही रोकेगा जब तक कि वो बीच से हटाना दिया जाए, और तब वह अधर्मी प्रकट होगा, इत्यादि। और जब मैं उस पाठ पर पहुंचा, ओ सत्य कितना स्पष्ट और गौरवमय प्रतीत हुआ। वही है, वही नित्य है। तो अब पौलुस जो अब रोकता है या बाधा डालता है से क्या अभिप्राय करता है? पाप का मनुष्य और वह अधर्मी से अभिप्राय पोपवाद है। तो पोपवाद के प्रकट होने में बाधा क्या है? क्यों, वह तो मूर्ति पूजकता है। तो फिर नित्य का अर्थ अवश्य मूर्ति पूजकता ही होगा। अपोलोस हेल, द सेकंड एडवेंट मैनुअल 66।
मानवीय तथा दिव्य दोनों के द्वारा मिलर के अध्ययन का ईश्वरीय प्रबंध के अधीन मार्गदर्शन अभिलेख में विद्यमान है। उसके पुराने मित्र ने उसे प्रेरित किया, और जो विचार उसके मन में आए वे स्वर्गदूत गैब्रियल की वाणी थे, जिसे सिस्टर व्हाइट लाइन अपॉन लाइन इस प्रकार पहचानती है कि वही स्वर्गदूत बारंबार मिलर से मिलने आता रहा। वो सात समय को अपनी पहली खोज ठहराता है और फिर 2300 को सात समय के दूसरे साक्षी के रूप में ठहराता है, क्योंकि वे दोनों 1843 में समाप्त हुए, ऐसा वो प्रारंभ में मानता था। ये दो भविष्यवाणियां उसकी अल्फा और ओमेगा खोजे हैं, और मिलर के साथ इनके भविष्य सूचक संबंध के भीतर इन्हीं के द्वारा उस भूल की पहचान होती है जिसे सैमो स्नो द्वारा मिडनाइट क्राई के संदेश से सुधारा जाना था, जिसने सातवें महीने के आंदोलन का आरंभ किया। मिडनाइट क्राई का आंदोलन सातवें महीने का आंदोलन था जब वो एक्सेटर शिविर सभा से निकला, क्योंकि वो सातवें महीने के 10वें दिन प्रभु के आगमन को चिन्हित कर रहा था, जो 1824 में 22 अक्टूबर को पड़ा। दूसरे स्वर्गदूत के सशक्तिकरण को उत्पन्न करने वाली भूल का निरूपण मिलर की प्रारंभिक समझ से होता है कि सात समय और 2300 वर्ष 1843 से 7-7 समाप्त हुए। उस अनुच्छेद में अगला जो सिद्धांत विवेचित है वो ये है कि मिलर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि रोम वो प्रतीक है जो दर्शन की स्थापना करता है। एडवेंटिस्ट इतिहास के अध्यापक ये प्रतिपादित करते हैं कि विलियम मिलर की समस्त भविष्यद्वाणीगत समझ इस बात पर आधारित थी कि उन्होंने दो उजाड़ने वाली शक्तियों की पहचान की थी। वे उन दो उजाड़ने वाली शक्तियों को मूर्ति पूजक पैगन रोम और पोपियर रोम समझते थे, और जब उन्होंने ये जाना कि दानियल की पुस्तक में डेली से आशय मूर्ति पूजक रोम है, तब उन्होंने उन दोनों शक्तियों को 2 थिस्सलुनीकियों में देखा। सिस्टर व्हाइट हमें बताती है कि स्वर्गदूत बार बार मिलर से मिलने आए। मिलर द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक भविष्यद्वाणीगत प्रतिरूप इसी समझ पर आधारित था कि रोम दर्शन की स्थापना करता है। प्रत्येक 31 दिसंबर 2023 से यहूदा के गोत्र का सिंह यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य पर लगी मोहरे खोल रहा है।
उसी समय से आधारभूत परीक्षा आरंभ हो गई थी और जब 8 मई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रथम पोप ने अपना पोपत्व आरंभ किया तब वो अपनी परिणति को प्राप्त हुई। उसी समय मंदिर परीक्षा आरंभ हुई।
हम अगले लेख में इन बातों को आगे बढ़ाएंगे और 350 वर्षों को साक्षी ठहराकर अपनी इस पहचान का समर्थन करेंगे कि आधारभूत परीक्षा का समापन वर्तमान पोप के साथ हुआ।